नमस्कार आदाब दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटने का वक्त आ गया है क्योंकि आज मोबाइल वाणी के क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में इतिहास की पढ़ाई का दिन आ गया है। तो देर किस बात की, चलिए सुनते हैं कि आपके पसंदीदा शिक्षक क्या खास बता रहे हैं आज।
मैं रामबोध कुमार प्लस टू उच्च विद्यालय नगनोसा में इतिहास शिक्षक के रूप में कार्यरत है। बच्चों, आज हम आप लोग के बीच औपनिवेशिक नगर मद्रास, कलकत्ता और मुंबई के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही नगरीकरण की प्रक्रिया भी आरंभ हुई। भारत में नगरों का उदय हड़प्पा सभ्यता के दौरान हुआ, आगे भी नगर बसते गए। मुगल काल में अनेक समृद्ध नगरों का विकास हुआ। नगर व्यापार, उद्योग, आर्थिक गतिविधियों, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक क्रियाकलापों के केंद्र थे। औपनिवेशिक काल में तीन प्रमुख नगर विकसित हुए, मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, कोलकाता तथा मुंबई। तीनों नगरों का विकास ग्रामीण बस्तियों से हुआ। तीनों गांव मूलतः मछुआरों और बुनकरों से बने थे। उपनिवेशी शासन काल में पर्वतीय सैरगाह का भी विकास हुआ। औपनिवेशिक शासकों ने भारत में पर्वतीय सैरगाह भी बनवाए। इन्हें निम्नांकित उद्देश्यों से बनाया गया। नंबर एक, सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति। पर्वतीय सैरगाहों की स्थापना का सबसे प्रमुख कारण था अंग्रेजी फौज की आवश्यकताओं को पूरा करना। हिल स्टेशन छावनियों को समान सुरक्षित थे। यहाँ से सीमा की चौकसी की जा सकती थी और सैनिकों को ठहराया जा सकता था। साथ ही यहाँ से आक्रमण भी किया जा सकता था, जैसे गोरखा युद्ध 1815-16 के समय शिमला तथा आंग मराठा युद्ध 1818 के दौरान। माउंट आबू का विकास हिल स्टेशन के रूप में हुआ। 1835 में सिक्किम के राजा से बलात् दार्जिलिंग लेकर इसे पर्वतीय सैरगाह बनाया गया। पर्वतीय सैरगाहों का विकास सेनेटोरियम रूम में भी किया गया। पहाड़ों का ठंडा जलवायु अंग्रेजों को अनुकूल था। गर्मी से विभिन्न प्रकार की बीमारियों की आशंका बनी रहती थी, अतः फौजियों को गर्म जलवायु से हटाकर हिल स्टेशनों पर रखने की योजना बनाई गई। मद्रास यानी चेन्नई नगर का विकास। औपनिवेशिक नगरों में मद्रास पहला बंदरगाह नगर था। सूरत के स्थान पर अंग्रेजों ने इसे अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। 1839 में मद्रास पट्टम, जो चेन्नई पट्टम के नाम से भी जाना जाता था, में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक चौकी स्थापित की। अंग्रेजों ने चेनापट्टम में बसने का अधिकार वहां के तेलुगु सामंतों कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था। अपने क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बसने का अधिकार प्रदान किया। उस समय 1763 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिद्वंदता फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ चल रही थी। सेंट जॉर्ज किला के बाहरी इलाका में काला शहर बसाया गया, परंतु इस शहर में भी औपनिवेशिक शहरों की नगर योजना के अनुसार बस्तियां सीधी कतार में बसाई गई थी। 18वीं शताब्दी में आरंभिक चरण में इस बस्ती को गिराकर किला के चारों ओर एक सुरक्षा क्षेत्र बनाया गया। मद्रास नगर का विकास विभिन्न गांवों को मिलाकर किया गया। मुंबई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। मुंबई दूर दूर स्थित 60 टापुओं से मिलकर बना नगर था। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय को बम्बई उसकी रानी के दहेज के रूप में पुर्तगाल के राजा से मिला था। यह पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह था। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का केंद्र था। एक अनुमान के अनुसार 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात बम्बई से ही होता था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के हफीम व्यापार का केंद्र था। हफीम के अतिरिक्त कपास के व्यापार से भी मुंबई का वाणिज्यिक महत्व बढ़ा। 1861 के गृह युद्ध के पूर्व अमेरिका में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक था, परंतु गृह युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस कपास की आपूर्ति बंद हो गई। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने के बाद बम्बई का संबंध विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गया, फलतः बम्बई की समृद्धि बढ़ी, सूती चीनी मिली खोली गई एवं भवन निर्माण में तेजी आई, फलतः बम्बई को सरकार और व्यापारियों ने भारत का सरताज घोषित कर दिया। 1833 में बम्बई में टाउन हॉल, जिसमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे स्थित है, का निर्माण नव शास्त्रीय शैली में किया गया। मुंबई में नव गौथिक शैली की सबसे विशिष्ट इमारत विक्टोरिया टर्मिनल्स, वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स है, इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी के मुख्यालय और स्टेशन के रूप में बनाया गया। इंडो सारासेनिक शैली, 20वीं शताब्दी के आरंभ में बम्बई में इस शैली की इमारतें बनी। इसे इंडो सारासेनिक शैली इसलिए कहा गया क्योंकि यह दो शब्दों के मेल से बना था, इंडो अर्थात हिंदू और सारासेनिक अर्थात मुसलमान। यूरोपीय मुसलमानों के लिए सारासेनिक शब्द का व्यवहार करते थे। अंग्रेजों ने भारत में इस शैली के भवनों का निर्माण यह दिखलाने का प्रयास किया कि वे भारतीय जनता हिंदू और मुसलमान दोनों के शासक हैं। इस शैली का सबसे विख्यात इमारत गेटवे ऑफ इंडिया, इसका निर्माण 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के भारत आगमन के समय स्वागत द्वार के रूप में हुआ।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाए नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।